ఓం శాంతి. हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण बाबा के नूरे रतन बहुत ही भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है. बाबा कहते क्या है, पद्मा पदम भाग्यशाली है. क्यों, कैसे? क्योंकि स्वयं भगवान ने जो सर्व गुणों के सागर है, आप सब जानते हैं, ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, जितने भी गुण हैं वो गुणों के सागर है. त्रिकालदर्शी सृष्टि के आदि मध्य अंत को देखने वाले, जानने वाले, वो हमें टीचर बन करके अभी स्वयं हमको ये इतना ऊंचा ज्ञान जो के किसी शास्त्र में, किसी ऋषि मुनि के पास, साधु संन्यासी के पास कहीं भी मिलता नहीं है. हो सकता है कोई, जैसे बाबा कहते हैं गीता आटे में नमक के बराबर है, शास्त्र में भी थोड़ा बहुत ऐसे कुछ आता हो, लेकिन ये ज्ञान जो के साइंटिफिक है, रीजनेबल है, बुद्धिगम्य है, एक्सपीरियंसेबल है, वंडरफुल है, ये जो त्रिकालदर्शी बनाता है, त्रिनेत्री बनाता है, ऐसा ज्ञान हमें किसी के पास नहीं, जो कि बाबा हमको दे चुके हैं और दे रहे हैं दिन प्रतिदिन. तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है. देखो, और दिया किसके द्वारा, किन के द्वारा दिया? शिव बाबा जो के परमात्मा सुप्रीम फादर है, वो किस में प्रवेश किया? प्रजापिता ब्रह्मा तन में, जिसकी कि अभी आपने, मोहन भाई ने कई बातें सुनाई, उनमें प्रवेश करके उनके मुखारविंद से हमको दिया. तो बताइए, जिसके तन में प्रवेश किया और उसके बाद 36, 37 से लेकर 69 तक अंतिम दिन तक भी उनके मुख से ज्ञानमृत की धारा बहती रही, उसके बाद फिर 69 से लेकर अब तक, हम कहते बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, कितनी बढ़िया. उस जिस स्थान में प्रवेश किया, पहले तो 32 वर्ष उनके साथ रहे, ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी और वो भी, फिर उसके बाद इतने साल तक बाप दादा सूक्ष्म वतन में, बाबा सूक्ष्म वतन में, दादा सूक्ष्म वतन में, दोनों इकट्ठे आते हैं हमको ज्ञान देते हैं. उनके साथ तो साथ कंबाइंड तो है ही ना, यानी 80 ईयर्स हो गए जो कि ब्रह्मा बाबा जो अव्यक्त, अब वो दादा कहो या बाबा कहो, उनका आपस में साथ है. तो वो जो आत्मा है, वो जो भाग्यशाली रहता है, कितना सौभाग्यशाली है. हम तो पुरुषार्थ करते हैं कि बाबा हमारा साथी है, कहते ना बाबा को साथ रखो, बाबा के साथ रहो, बाबा को साथी बना के चलो, परंतु वो तो कितने सालों से बाबा के साथ है ही है. तो कितना पावन वो रथ है और कितना पावन वो आत्मा है, बात मत पूछिए. मैं तो कहता हूं, एक कहावत है उर्दू में, आदम को खुदा मत कहो, आपने सुनी होगी शायद पहले. आदम माने एडम, या आदम या ब्रह्मा, उसको आदम को खुदा मत कहो. आदम खुदा नहीं, खुदा तो नहीं है, कितना भी हम कहें ईश्वर तो नहीं कहते हम उसको, बाबा हमेशा कल भी आज भी मुरली में था कि मैं भी पुरुषार्थी हूँ, मुझे किराया मिलता है, हंसी खुशी करता हूँ, लेकिन मुझे भी आप जैसे पुरुषार्थ करते हैं मुझे भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन हम तो कहते हैं आदम को खुदा मत को, आदम खुदा नहीं, परंतु आदम जो है खुदा के नूर से जुदा भी नहीं है। जब शिव बाबा उसमें प्रवेश किया तो शिव बाबा के जो गुण हैं वो वही सारे के सारे गुण ब्रह्मा बाबा में भी आए। हम देखते थे बाबा को, हम तो बहुत 57 से लेकर के 69 तक 12 साल तक उनके अंग संग तो नहीं रहे, यानी कनेक्शन में आने का बहुत मौका मिला। उनके उन्होंने ट्रेनिंग दी, कहो उन्होंने हर प्रकार से पालना दे करके बड़ा किया, सेवाएं दी, सेवा कराई और हर प्रकार से हमारी पालना की। तो देखिए वो हम देखते थे कि बाबा में भी वही गुण है जो शिव बाबा में ही गुण थे। अगर वो ज्ञान के सागर है तो ये भी कोई मास्टर तो थे ही थे। आप बताइए जब भी उनसे कोई मिलता था उनके मुख से ज्ञान ही टपकता था। अब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों साथ साथ हैं, हम उनको जुदा तो कर सकते नहीं, मैंने पहले कहा। तो हम ये नहीं कह सकते कि निर्णय कर सकते थे कि शिव बाबा बोल रहा है या ब्रह्मा बाबा बोल रहा है। मुरली भी आप सुनते हैं दोनों मिक्स होता है, कभी ब्रह्मा बाबा बोलते हैं कभी शिव बाबा बोलते हैं। हम उनको सेपरेट करें ऐसा नहीं हो सकता। बाबा मीन्स बा प्लस बा, दोनों बाबा साथ साथ है। देखिए ऐसे बाबा के साथ हमें बड़ा सौभाग्य है इतने वर्ष रहने का, उनसे करेक्शन, उनसे डायरेक्शन, उनसे इंस्ट्रक्शन, उनके सामीप्य का हमको अनुभव हुआ, रहने का मौका मिला। हम अब जब सुनी हमने भी हिस्ट्री सुनी, पहले तो हम तो 57 में आए, जब ये सुना कि देखिए बाबा क्या थे, सारे कलकत्ता में और वो सिंध के मुखी थे, बहुत बड़ी हस्ती थे अपने इलाके के और उनकी बड़ा रिगार्ड था, रेस्पेक्ट था, बहुत बढ़िया व्यक्ति थे। अभी भी आप अगर जाएं कलकत्ता में उनके ही नाम से एक लिखा हुआ दादा ना लखीराज की पुरानी मशहूर दुकान, ऐसे हम एकदम जब गए तो देखा था, इतना बड़ा उनका जवाहरात का धंधा था। जब शिव बाबा ने उनमें प्रवेश किया, उनको साक्षात्कार हुए, दो साक्षात्कार हुए, पहले मुख्य किस चीज का, एक विनाश और दूसरी क्या, दूसरा क्या हुआ, स्थापना का। वो विनाश को देख करके ये तो दुनिया जो है जा रही है, प्रकृति बहुत बिल्कुल खत्म कर रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, मारामारी हो रही है, महाविनाश का साक्षात्कार किया। फिर उसके बाद नया युग आने वाला है, वो देखाया कि कैसे ऊपर से आत्मा आकर के प्रिंस और प्रिंसेस बनने हैं। दोनों साक्षात्कार करने के बाद बाबा को बहुत वैराग आया, जबरदस्त वैराग। उन्होंने क्या किया बताओ, आप विचार कीजिए, जिसको ये निश्चय हो जाए कि मुझे भगवान ने पकड़ा है, भगवान मेरे से कार्य कराना चाहता है, उन्हें सब कुछ, जैसे आपको मालूम है पूरा का पूरा जवाहरात का धंधा अब भी कितना मशहूर है, कितना जबरदस्त धंधा है, तब तो 1936-7 में क्या होगा उसका। उस वक्त धंधा भी छोड़ दिया, बिजनेस छोड़ दिया, अपने पार्टनर को दे दिया। पार्टनर ने कहा चलो आप काम मत करो लेकिन आपको पैसे मिलते रहेंगे, नाम तो आप कर रहे हैं, नहीं छोड़ दिया वो। उसके बाद अपना तन मन धन सब लगा दिया, परिवार भी लगा दिया, आप बताओ जितने बच्चे थे उनको भी ज्ञान में लाए। आप विचार कीजिए भी आगे, ये सोचा नहीं आगे चलेंगे नहीं चलेंगे, ये भी सोचा नहीं। उसके बाद इतने मशहूर थे वो, राजा रजवाड़े उनके मित्र थे और अपने सिंध में मुखी थे, वो अपनी उनको भी छोड़ दिया, नेम एंड फेम भी खत्म कर दी, मैं मशहूर हूं बड़ा आदमी हूं, नो वो भी छोड़ दिया। तब जो कुछ था सब कुछ अपना अर्पण कर दिया, वो आप सुना है कि वो ट्रस्ट बनाया, कुछ भी किया, खुद अपने पास कुछ रखा नहीं, तो बाबा ने ये एक मुरली में आया था कि मैंने ऐसा क्यों किया। यानी उस वक्त अभी कोई ऐसे हालात नहीं थे कि अभी तो हालत है, बहुत खराब हालत है, उस वक्त इतने खराब हालत नहीं थे कि अभी विनाश हुआ, लेकिन बाबा को साक्षात्कार हुआ था। तो बाबा ने ये सब बोल के मैंने ये किया, एक मुरली में आया था, मैंने ये किया कि मैंने ऐसा किया क्यों, आप बताओ। बाबा अगर वो कहता धंधा चलता रहे, पैसे आते रहेंगे, यज्ञ चलता रहेगा, ये ऐसा भी हो सकता था। बाबा ने कहा नहीं, सब राजे सबसे करप्शन छोड़ा, राजे रजवाड़े अपने रिश्तेदार अपने साधु सन्यासी सब कुछ छोड़ा, तो बाबा ने ऐसा किया क्यों। फिर बाबा ने खुद ही जवाब दिया, बच्चे मैंने इसलिए किया ताकि मुझे अंत में कुछ भी याद ना आए। बताए आप, वो खुद मुरली में बाबा ने कहा कि मैंने जो किया इसलिए किया कि ताकि अंत में मुझे कुछ भी याद ना आए। तो देखो बाबा का एम था पहले शुरू से। तो जब बाबा अव्यक्त हुए, आपको मालूम है ना कोई लौकिक था, कोई साथ नहीं था, और कहा डॉक्टर को बुलाएं, तो पूछा, कहता नहीं मैं तो सर्जन के साथ हूं, बाबा के मुख से निकला। अरे मेरा सर्जन तो मेरे साथ है। यानी ऐसी तबीयत ना होते, ठीक ना होते भी अंत तक मुरली उनके मुख से कितना ज्ञानमृत निकलता रहा, बाबा कहते ना। यानी स्वयं से बाबा के और कुछ भी याद ना है, ऐसा उनने करके दिखाया। केवल एक दादी थी, उनको हाथ दिया और चल उड़ गए, कितना बड़ा बढ़िया यानी अव्यक्त होने का उनका पार्ट था। तो ये देखा गया, अब वो तो जमाना गया, वो तो अब हम ऐसे नहीं कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ बैठ जाएं। बाबा ने तो किया, उनके उनके साथ साथ औरों ने भी बहुत कुछ किया। आप तो बाबा कहता है घर गृहस्थ में रहते हुए सारा कारोबार तो चलाना ही है, करना ही है, और बाबा को याद करना है। तो हम भी जब इस ज्ञान में आए, हम कैसे ज्ञान में, थोड़ा सुना दे ताकि 1957 में हम जब पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो हमको किसी ने ज्ञान दिया, हमारे एक भाई ओम प्रकाश जी थे, दो इंदौर जोन के इंचार्ज थे, अभी तो फिर छोड़ दिया, उनने ज्ञान दिया कि आप आत्मा हैं, ये बताया। तो हमने कहा आत्मा को हमें दिखती तो है नहीं, हम कैसे माने आप आत्मा है। बहुत दिन तक डिस्कशन चलती रही कि आप आत्मा है, हम कह नहीं है। तो अंदर मानते थे कि हम आत्मा तो है ही, सब लोग जानते हैं आत्मा तो है ही। तो एक दिन उन्होंने कहा कि आप ये मान जाओ कि आप आत्मा है। हमने कहा ठीक है, अंदर तो मानते थे, बाहर कह दिया हम आत्मा है। बस इतना कहना था कि मैं आत्मा हूं, इतना बोला, इतना मैंने स्वीकार किया, दिल से माना। आप मानेंगे उसी समय से अनुभूति होनी शुरू हो गई। ऐसा अनुभूति होने लगी जैसे लाइट हल्का, उसका प्रैक्टिस शुरू हो गया। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, आई एम सोल नॉट बॉडी। उसको खूब लिखा, खुद अंदर से बोला भी, लिखना शुरू कर दिया, जहां जगह मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो ये क्योंकि हम देह मान में बहुत थे, हम सभी कॉलेज में पढ़ते थे, देह मान में थे, तो ये देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस हो गई। बाजार में जाए तो ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये बहन भी आत्मा है, दृष्टि वृत्ति बदल गई फटाफट। तो मुझे तो आश्चर्य हुआ कि ये क्या जादू लग गया है। आप जानते हो उस समय तो बहुत बहुत कम लोग थे, हजार हजार 2000 भी मुश्किल सारे इंडिया में होंगे, आज तो लाखों हैं और संपर्क में तो कितने हैं। और बाबा फ्री थे, फटाफट जैसे बुद्धि को खींच लिया, बाबा तो पकड़ना चाहते थे कोई बच्चा आया तो मैं खींचूं, तो ऐसा खींचा कि सारा जीवन बदल दिया। इसी एक पॉइंट से, एक ही बात से मैंने कहा भाई आप बताओ आपके पास और क्या खजाना है, हमें सुनाओ क्या तो आपके पास खजाना है। उनने फिर सब ज्ञान सुनाया, ज्ञान सुन करके इतनी बुद्धि हल्की होगी, इतना खुशी और मजा आनंद आ गया, बात मत पूछी। आत्मा क्या है, परमात्मा शिव है, शिव शंकर में अंतर है, गीता का भगवान कौन है, सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का हूबहू रिपीट होता है, इतना अच्छा लगा ये सब बातें। जब ज्ञान सुना उससे सेटिस्फेक्शन हुई, एक खुशी से भरपूर हो गए, खुशी आई, हैप्पीनेस आ गई बहुत। और इतना वंडरफुल ज्ञान सुन करके मैंने देखा। अब ये देखो कुछ दिन मुरली में एक बात आई थी, कि महाभारत गीता और रामायण का कनेक्शन क्या है, दुनिया वाले क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, गीता के बारे में। बाबा ने कहा देखो बच्चे, रामायण तब पूरी होगी जब महाभारत होगी, रामायण राज तब खत्म होगा जब महाभारत होगी। वो तो कहता है महाभारत में ये था भविष्य, वो क्या इतने पांडव थे, कौरव थे, ये था लड़ाई मरी, क्या क्या वो बात सुनाते हैं। बाबा ने कितनी बड़ी फिलॉसफी है, कितनी बड़ी बात है, कितने बड़ी एक पॉइंट है, रामायण तब फिनिश होगी जब महाभारत होगी। रावण राज कब खत्म होगा? महाभारत के बाद ही रावण राज खत्म होगा। अब बताइए कहां की बात, कहां बाबा ने बताई, कितनी वंडरफुल बाबा ने बातें सुनाई। तो ये इन बातों को सुन के राम कौन है, रावण कौन है, सारी एक्सप्लेनेशन जो दंत कथा हम सुनते थे, सुन करके बहुत बहुत जीवन में खुशी आ गई। तो हमने कहा उस भाई से, भाई हमें ये बताइए इसका ज्ञान का अभी सोर्स कहां से मिल रहा है ज्ञान आपको। फिर हम चले, 7-8 दिन हुए थे, बाबा मम्मा से मिलने के लिए चले, बाबा मम्मा से मिलने के लिए दिल्ली में बाबा मम्मा आए हुए थे। दूसरा पहले तो खुशी हुई जब हम वहां पर गए, और मैं शॉर्ट में सुना रहा हूं, बाबा मम्मा से मिले क्लास में, उनकी पर्सनैलिटी देख करके, टावरिंग पर्सनैलिटी। आप बाबा को देखेंगे 6 फुट का तो उनका वो था, धोती कुर्ता पहनते थे, शाइनिंग फेस आई टेल यू, चेहरा 80 साल की उम्र थी, 80 ईयर्स, और चमकता हुआ चेहरा, और आईज क्या कहेंगे, बबिचिंग, ये तो होता ना किसी को खींचने वाली, किसी को दृष्टि देंगे तो उड़ाने वाली, ऐसी आईज, ऐसी पर्सनैलिटी देख करके बहुत आनंद आया। बाबा मम्मा दोनों को देखा, और जैसे दोनों फरिश्ते बैठे हैं उस वक्त। तो हमने ये निश्चय किया, ये निश्चय आ गया, उसको देख के हमारा, पहले तो हम हैप्पी थे हुए हैं, फिर हम हैप्पियर हो गए, और ज्यादा खुशी होगी कि यही हमारे वास्तव में रियल में माता पिता है, ऐसा हमको उनको देखकर ही निश्चय हो गया। देखिए बाबा मामा से मिले, गोद ली, हमें किसी ने नहीं कहा था कैसे, बाबा के गोद में भी गए, मम्मा के भी गोद में, ऐसे नहीं कि मम्मा से कोई हाथ जोड़ा ये क्या वो नहीं, मम्मा ने भी गोद में लिया, थपथपाया, प्यार किया, आंसू आ रहे थे कि बाबा कहते बच्चे चलो अब तो कल अब के बाद मिल ही लिए, अब तो जो वो आपकी वो था खत्म हुआ तो मिल लिए। तो इस प्रकार से बाबा मामा से मिलकर के बड़ी खुशी हुई, बहुत वो फीलिंग हमारे बहुत इनके आरामदेह फीलिंग जैसे वो आई। तो बाबा ने मेरे प्रति एक वरदान उच्चारण किया उस वक्त जब बाबा से मिल रहे थे, उन्हें पता लगा कि मैं इंजीनियरिंग में पढ़ रहा हूं, भी फर्स्ट ईयर आए। बाबा ने देखो क्या वरदान दिया, वो भृगु ऋषि है, सृष्टि के आदि बदंत को भी जानते हैं, तो मनुष्य जो उनके कनेक्शन में आते हैं उनको देख कर के बता सकते हैं इसका भविष्य क्या है, ऐसा भी वो जानते हैं, ऐसा मुझे फीलिंग आई। बाबा ने कहा बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे हो, ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। बोलिए अभी मैं केवल 7-8 दिन का ही बच्चा हूं, लेकिन निश्चय बुद्धि पक्का था। बाबा ने कहा था बच्चे ये पढ़ाई कोई काम आने वाले नहीं है, विनाश तो सामने खड़ा है। ऐसा कब, अब भी आप कोई मुरली सुनेंगे उस मुरली में विनाश और स्थापना की दो बातें तो अवश्य आएंगी, वो सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। सत्यम सत्य अविनाशी है और कल्याणकारी है, जो बात करेगा कल्याणकारी है, और अति सुंदर तो है ही, हम तो काले और श्याम बनते हैं, श्री कृष्ण भी काला श्याम बनता है, वो तो सदा सुंदर ही ज्योति बिंदु रहता है, वो कभी काला होता नहीं, वो अति सुंदर है। तो ये देखा जब बाबा ने ये कहा तो मैंने कहा बात तो ठीक है, विनाश उस वक्त भी लगता था विनाश सामने आए, सच कहते हैं, जैसे अभी कहता है ना जो अभी चीज देखते हो ना, भगवानों वाच कौन कह रहा है, कुछ समय के बाद ये नहीं देखेंगे, देखने में नहीं आएंगी, और जो नहीं देखते हो वो देखने में आएंगे, कौन कौन बोल रहा है ये, भगवान के महावाक्य, कोई इंसान के नहीं है। ये होना है जरूर। ये हम बताएं, हम जब पहले पहले मिल के बाबा से आए तो मैं एक और बात सुना दूं कि वहां पर हम जब पहले पहले मधुबन में आए, वो पहले सुना देता हूं आपको। अभी हिस्ट्री हॉल भी नहीं बना था, और हॉल तो छोड़ो, मेडिटेशन हॉल नहीं, हिस्ट्री हॉल नहीं, वो भी हॉल नहीं, जो ओम शांति भवन भी नहीं बना था। वो जहां ईशु दादी का ऑफिस है वहां पर एक छोटा सा कमरा था, बाबा मामा की गद्दी थी, हम बैठ के टाट बिछा के या पता नहीं दरी बिछा के बैठते थे, बाबा की मुरली सुनते थे। बाबा क्या कहते थे, कमाल की बात, बच्चे ये ज्ञान बहुत अनमोल है, फॉरेन तक जाएगा, यहाँ क्यों लगेगी, और यहाँ ऋषि मुनि साधु सन्यासी सब आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे। हम अंदर सोचते थे बहुत, अभी तो हम 15-20 बैठे हुए हैं। तो ये इतना बाबा की भी कितनी दूरदर्शिता, कैसा होना है। तो ऐसा देखो हुआ कि नहीं हो रहा है ना, देखो 20-25 हजार आते हैं, बैठने की जगह नहीं, रहने की जगह नहीं, कितना मुश्किल तो होता है। कैसे कैसे लोग आते हैं, बड़े बड़े लीडर्स भी आते हैं, साधु सन्यासी भी आते हैं, बहुत कितनी पब्लिक आती है। कहां वो जमाना जब बाबा की क्लास में माइक तो था ही नहीं, और 15-20-30 थे जब हम पहले पहले आए, ज्यादा मधुबन में मिलने भीड़ हो गई है। जब आएंगे ना 20-30 आ जाएंगे, रहे कहां, जगह रहने की थी नहीं, किराए पर बाबा मकान लेते थे। तो बताइए कहां, बाबा ने तब कहा था बच्चे ये होगा, फॉरन में जाएगा ज्ञान, फॉरन वाले आएंगे, वो प्रत्यक्षता करेंगे। कितनी बातें जो बाबा ने उस समय कही, अब वो सिद्ध हो रही है। बोलो, इसलिए अब जो बाबा कहता है कि ये जो तुम देखते हो फिर वो देखने में नहीं आएगा, और जो नहीं देखते हो वो देखने में आएगा, ये भी होना है जरूर। बाबा ने क्या कहा था, बच्चे किसी की दबी रहेगी किसमें, धूल में, किसी की कितने आर्थिक होते हैं, वो कच्छ का हुआ था तो करोड़पति भी रोड पर आ गए थे, रोडपति हो गए थे। अभी क्या हुआ है, अभी देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, वो 500,000 का नोट खत्म किया, तो कितने लोग अमीर से गरीब हो गए होंगे शायद, देखो जिनके पास पैसा होगा, या कितने उनको चिंताएं लगी होंगी बताओ। वो तो दबी रही धूल, राजा खाया, तो अभी दबी रहेगी धूल में, होना है। हम बताएं आपको ऐसे, अब आजकल डेली अर्थक्वेक आ रहे हैं, हम बताया डेली, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं आता ही रहता है। अभी वो 6.8 का, मैं अगर 8.6 हो जाएगा तो क्या हाल हो जाएगा आप देखिए। इसीलिए जो बाबा ने कहा है वो होगा जरूर, पक्का होगा, होने ही वाला है। तो हम जब बाबा ने ये कहा कि बच्चे तुम्हारे पढ़ाई ये काम नहीं आएगी, तो हमने कहा ठीक है बाबा, पढ़ने की क्या दरकार है। हमने बाबा को लेटर लिखा वापस जा करके, अंग्रेजी में लेटर लिखा, इंग्लिश में, और बाबा ने भी फौरन 2 दिन में इंग्लिश में जवाब दिया, और जो बाबा ने कहा हमने कहा हम वैसा करेंगे। जो अगर बाबा कहता है पढ़ो तो पढ़ो, नहीं पढ़ो तो नहीं पढ़ो। हमने लेटर लिखा बाबा को इंग्लिश में, बाबा आई डोंट वांट टू डिजाइन बिल्डिंग्स, इंजीनियर क्या करता है, एंड कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, बट आई वांट टू बी स्टोन, कॉर्नर स्टोन ऑफ द ह्यूज एडिफिस, ह्यूज बिल्डिंग ऑफ न्यू एज विच यू आर इरेक्टिंग, जो आप एक बहुत बड़ा सतयुगी महल बना रहे हैं उसमें मैं एक कॉर्नर स्टोन बनना चाहता हूं। फिर कहा आई डोंट वांट टू डिजाइन हाईवेज एंड रोड्स, बट आई वांट टू रन ऑन द हाईवे गोइंग टू परम धाम एंड गोइंग टू गोल्डन एज। फिर लिखा मैंने आई डोंट वांट टू डिजाइन मशीनरी, बट आई वांट टू बी ए पार्ट ऑफ किंग एंड क्वीन मशीनरी ऑफ दिस फॉर द न्यू वर्ल्ड। बाबा कहते थे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय क्या है, नई दुनिया को बनाने का, किंग एंड क्वीन मेकिंग मशीनरी। अभी भी मुरली में कई दफा आता है। तो बाबा का फिर जवाब आया, बच्चे बहुत, वो बाबा लाल अक्षरों में लिखते थे, 5-7 पेज लिख देते थे, होता था छोटा सा मैटर था, बच्चे बी पेशेंट एंड गिव दिस नॉलेज टू योर इंजीनियर एंड टू योर पेरेंट्स, ये बाबा ने डायरेक्शन दी। तो हमने कहा ठीक है, बाबा ने लिख दिया तो करें ऐसा करेंगे। तो हमने खूब प्रचार प्रसार किया, फिर अपने हॉस्टल में रहते थे वहां कमरा बनाया, वहां पर बाबा का चित्र था नहीं, लाल बल्ब लगाया और ग्रामोफोन बजाया, वो जैसे एक छोटा सा बाबा का कमरा होता है बना करके, हम सब अपने आस पास के जो स्टूडेंट्स थे उनको ज्ञान देना शुरू किया, प्रोफेसर को समझाना शुरू किया, जो मिलता था ज्ञान देते थे हम। इस प्रकार से बाबा का जो बात थी हमने वो फॉलो किया। फिर बाबा ने कहा था तुम लौकिक पेरेंट्स को भी ज्ञान दो, हम आपको नई बात सुनाते हैं। हम समर वेकेशन में अपने लौकिक परिवार में गए, पहले माता जी को ज्ञान दिया, वो फटाफट ज्ञान में आ गए। फिर लौकिक पिताजी को ज्ञान दिया, उन्होंने कहा ज्ञान तो आपको, उन्होंने बड़ी भक्ति की थी, बहुत कृष्ण के भगत थे, उन्होंने कहा ज्ञान तो अच्छा है परंतु अगर मुझे बाबा आपका कुछ चीज दिखा दे तब मैं निश्चय बुद्धि हो सकता हूं, अदरवाइज तो ज्ञान तो अच्छा है। तो हमने कहा भी अभी तक निश्चय साक्षात्कार करा दे, दिखाना मीन्स कोई साक्षात्कार करा दे। तो हमने कहा भी हम तो जाते नहीं है, हमें पता नहीं है। तो हमने कहा बाबा चाहे तो करा सकता है, तो किसी के हाथ में नहीं है, ड्रामे में होगा तो बाबा करा देगा। तो हम एक बार गुरुवार को बैठे थे, भोग हम जैसे खाना खाने से पहले भोग लगा के खाना खाते थे, सबको बिठाया, उनको भी बिठाया। तो कुछ देर के बाद, ये रियल मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, उठ के खड़े हो जाते हैं वो, किसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, कभी इधर पकड़ते हैं, कभी इधर पकड़ते हैं, इधर पकड़ते हैं, वो पकड़ते हैं, उनको पकड़ में वो आती चीज नहीं है। तो फिर वो बड़े उदास नीचे उतरते हैं, जैसे कहीं नीचे है। मैंने कहा बता, हम तो बड़े खुश हो रहे थे कुछ ना कुछ हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग। तो उन्होंने कहा हम ऊपर कहीं गए तो बहुत छोटा बहुत सुंदर सा श्री कृष्ण मुझे देखने में आया, मैं उसको पकड़ता हूं, मेरे इधर जाऊं तो इधर चला जाए, इधर जाऊं तो इधर चला जाए, मैं उसको पकड़ नहीं सका। बड़ा उदास, उसे आंसू आ रहे हैं और कुछ नहीं हो सका। फिर आपके बाबा जी दिखाई दिए, बाबा ने कहा बच्चे अगर तुम निश्चय बुद्धि बनोगे, धारणाओं पर चलोगे, सब चीजें मानोगे, तभी श्री कृष्ण आपकी गोद में आएगा। उन्होंने शुरू कर दिया, इतना कोई बात नहीं, हम तो बुजुर्ग 50-60 साल के थे होंगे, क्या हर्जा, अच्छी बात है। सब कुछ शुरू कर दिया, मुरली सुननी शुरू कर दी, सब कुछ हो गया, हम भी एक महीने वहां पर रहे। फिर अगले हफ्ते फिर भोग लगाया, तो उठे, फिर वही उठ के खड़े हो गए। फिर वो देखा श्री कृष्ण उनकी गोद में आया, बड़े खुश हुए, इतने खुश थे बात मत पूछिए, और आंसू बहा रहे थे कि मेरी जो आज थी मेरी भक्ति मार्ग की वो बाबा ने पूरी की। क्योंकि बाबा को क्या कहते हैं, भक्त वत्सलम भी कहते हैं, बाबा का एक नाम है भक्त वत्सलम, भक्तों की इच्छा भी पूर्ण करता है। तो भक्त बहुत, आप मानेंगे भागवत पुराण को पढ़ते पढ़ते सो जाते थे, इतना उनको प्यार था श्री कृष्ण की बातें सुनने और कथा सुनाने में, वो सुनाते भी थे कथा, हम भी उनसे सुने हुए थे। तो उस दिन के बाद वो निश्चय बुद्धि, सब लोग देख रहे हैं ये ऊपर जा रहा है, कुछ ये किसी को मिल रहा है और कोई दिखता है नहीं, तो सब गांव वाले भी और सारे हमारे परिवार वाले भी आश्चर्य करते थे। उसको देख करके सारा हमारा परिवार, माता जी, पिताजी, भाई बहने, पूरा का पूरा परिवार हमारा ज्ञान में आ गया। ये बड़ा अच्छी बात थी, हम बड़े खुश हुए। बाबा ने कहा तो हमने जैसा किया वैसे चले, तो सारे ज्ञान में आ गए। हमारे लिए कोई परीक्षा नहीं, कोई उनने कहा पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो, हमें तो निश्चय हो गया है कि अब विनाश सामने खड़ा है, कलयुग जाएगा, सत्युग आएगा, निश्चय बुद्धि सारे बन गए। तो देखिए ये अच्छा हुआ। फिर हमने बाबा को लिखा, मैं बड़ा खुशी से बाबा को लिखा, बाबा बाबा पत्र लिखा, हमारे लोगों के बाबा भी ध्यान में जाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे मैंने भी बहुत साक्षात्कार किया है। तो बाबा ने वो हवा निकाल दी कि उसको ज्यादा वैल्यू नहीं दी, क्योंकि बाबा कहता साक्षात्कार, आज साक्षात्कार है तो कल कुछ और हो गया तो वो उल्टा भी हो जाता है। इसलिए बाबा को लिखने पर भी बाबा ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने कहा बाबा इस बात से कितने लोगों को अच्छा लगा, वो निश्चय हुए। उसके बाद वो तो ध्यान ही बन गए। जब हम उनसे पूछे, बाबा से पूछ के आओ, जाएंगे संदेशा लेके आएंगे। जब बाबा से मिलते थे, जब मधुबन में आके रहते थे, महीना महीना आकर रहते थे, मम्मा उनको गद्दी पर बिठाती थी, बच्चे प्यारे लाल जाओ बाबा को भोग लगा के आओ। इस प्रकार से उनका पाठ खुला तो बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा हुआ। तो हम तो सारे हमारे लौकिक परिवार के ज्ञान में आ गए, कोई हमको परीक्षा नहीं आई। इंजीनियरिंग पढ़ते गए, आगे चलते गए, बगैर पढ़े पढ़ाए हम पास हो गए। कभी कभी मम्मा आ रहा है, कभी बाबा आ रहा है, कभी प्रदर्शनी लग रही है, कभी कुछ हो रहा है, हम सारा कभी हफ्ते में दो दफा भोग होता था, हम कोई मिस नहीं करते थे, जिससे पढ़ाई में तो इंटरेस्ट था नहीं। आप मानेंगे या विदाउट एनी स्टडी आई पास्ड इंजीनियरिंग विदाउट को बिगड़ पड़े पास हो गए, मालूम नहीं कैसे। हम नहीं चाहते थे पढ़ हो फेल हो जाओ, क्या करना है, भगवान मिला बाकी क्या चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हारे पढ़ाई काम में नहीं आएगी तो क्या फायदा है। फिर भी हम कभी कभी जाते थे, हफ्ते के बाद चले गए, हाजिरी माई वो लड़के लगा देते थे, पता नहीं पास जो लिखा लिख दिया, अपने आप जैसे पास हो गए। तो इंजीनियरिंग डिग्री लेने के बाद हम एक और बात सुने आपको बीच में, हम बाबा के पास तो कई बार आना जाना होता था मधुबन में, यहाँ भी वहां भी। हम जब फर्स्ट टाइम मधुबन में आए 1957 में, बताया आपको, बहुत थोड़े लोग थे, बड़ा अद्भुत सीन था। क्या सीन था? उस वक्त मम्मा की मां भी जिंदा थी, उसका नाम था रोचा। मम्मा की युगल भी जिंदा थी, उसका नाम था यशोदा। किसी को पता नहीं है उनकी मां है क्या पता, लेकिन मालूम पड़ा जब मम्मा को उनकी मां क्या कहती थी, मम्मा, यानी अपनी बेटी को मम्मा कहती थी और मम्मा उनको बेटी बेटी कहते थे। आप बताइए क्या अद्भुत नजारा है। बाबा को बाबा की युगल कहती थी बाबा, और बाबा उनको बच्ची कहता था। ये कितनी वंडरफुल बात है, कितनी जबरदस्त बात है। कोई संबंध की भाषा थी नहीं, पर ये इनकी युगल है, ये उनका वो है। एक संतरी बहन थी, एक दादा बिज किशोर, हम तो सभी से मिले हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि जितने भी हमारे पूर्वज हैं, दादा विश्व किशोर, दादा अनंत किशोर, दादा विश्वरतन, दादा चंद्रहास, सभी और बड़ी बड़ी दादियां, बड़ी दीदी दादी सब, ब्रजेंद्रा दादी सब, सभी दादियों से दीदियों से हमारा बहुत संबंध रहा है। क्योंकि कोई ना कोई हमारा ड्यूटी ऐसी बन गई थी दिल्ली में चित्रशाला की, कहीं म्यूजियम बन रहा है, कहीं फेयर है, कहीं कुछ है, हमको बुलाते थे, हम जाते थे, तो उनसे मिलना होता था, सेवा करने का मौका मिलता था। तो देखा मैंने, कहा क्या कमाल है, एक गांधी ने अपनी पत्नी को क्या, माँ को कहा, क्या कहा, कितना उसका नाम हो गया। यहाँ तो कोई संबंध की बात ही नहीं है, कोई भाषा नहीं है कि ये उनका पत्नी है या उसकी माँ है। ऐसे हमारी दादी गुलदार है, पांडव मन में रहती थी, उनकी माता जी आलोंडर भी पांडव मन में रहती थी, हम भी कभी जाते थे रहते थे। किसी को नहीं मालूम था कि आलोंडर दादी क्या दादी गुलदार की माता जी है, किसी को पता ही नहीं, हमें पता नहीं था। बहुत समय के बाद पता लगा कि ये तो दादी की आल अंडर दादी, दादी गुलदार की माता जी, किसी को पता ही नहीं। यानी देहिक संबंधों का तो नामो निशान गुम था, देही अभिमानी स्थिति। तो हम मैं बता रहा था बात, जब मैं आया पहली दफा मधुबन में, बाबा की एज 80 साल की थी, देखा वो अभी जो है ना हमारा शांति स्तंभ, वहां पर टेनिस कोर्ट था, वो कोई बिल्डिंग नहीं थी वो अभी, उस वक्त वो भी नहीं बना था, हिस्ट्री हॉल भी नहीं बना था। बाबा जो थे वहां एक गेम खेल रहे थे, आपके कौन सा गेम, आप बैडमिंटन कहेंगे, बैडमिंटन नहीं, क्रिकेट खेल रहे थे। देखे ना अभी आप बच्चे नहीं खेलते हैं, गलियों में वो खेलते हैं ऐसे। तुम्हारे दादा विश्वतन बाल फेंकते थे, बाबा मारते थे, बच्चे जो थे वो उसको बड़े हंसी खुटी में पकड़ते थे। यानी बच्चों को बाबा खिला रहे थे, लेकिन एज कितनी, 80 साल की उम्र होगी बल्कि ज्यादा होगी, ऐसी उम्र में मैंने देखा इरेक्ट करे हैं, खेल रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं, एक बहुत अद्भुत सीन था। जैसे हुआ है ना वो श्री कृष्ण की कहानी बनाते हैं, जमुना का कंठे पे वो गेंद खेली, चल फेंक दिया, ऐसे कुछ कहानी आती है। तो उस सीन को मैं, मेरे पास कैमरा था, मैं उसको फोटो खींचने लगा। बाबा ने खेल बंद किया, बाबा ने कहा बच्चे फोटो मत खींचो। मैंने कहा क्यों बाबा? बच्चे देखो, तो बाबा ने क्या महावाक्य उच्चारण किया, कितने जबरदस्त महावाक्य है, बच्चे मेरा तो फोटो आएगा नहीं, ये कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, ये शिव बाबा कह रहे हैं ना, ब्रह्मा का भी फोटो नहीं आएगा, उसकी आत्मा का भी नहीं आएगा, और ये शरीर छीछी है। हमेशा बाबा कहते थे शरीर को मत देखो, इस तन को देखो ही मत, देखना है तो किसको देखना है, सत्यम शिवम सुंदरम को, बाबा को देखो। इस शरीर से बिल्कुल ध्यान नहीं हो, याद करना तो उसको करना है। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, अगर आप कहते नहीं लो तो अच्छी बात है, इसलिए मेरा कोई भी फोटो इतने साल रहने पर भी बाबा के साथ नहीं है। तो हमने कहा नहीं लेते। बाबा ने यह शिक्षा दी कि बच्चे या, याद करना है, कनेक्शन जोड़ना है, तो एक निराकार शिव बाबा से जोड़ो। हाँ, ब्रह्मा सी फादर, फॉलो फादर, देखना है शिव बाबा को, फॉलो करना है ब्रह्मा बाबा, क्योंकि वो हमारे सामने है, ये देखा नजारा हमने। इस प्रकार से चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, इंजीनियरिंग पास कर ली और फिर हम बाबा के पास आए, अपने लौकिक परिवार को भी ले आए। अब क्या करना है, बाबा ने स्पष्ट कहा, बच्चे मैंने तो कहा था तुम्हारी पढ़ाई ये काम आने वाली नहीं है, हम डिग्री भी नहीं लाए थे। तो बाबा ने, मैंने क्या करना, बाबा ने हमको सेवा पर लगा दिया, दिल्ली भेज दिया, काम भेज दिया, ये भेज दिया। हमारे लौकिक फादर कहे मम्मा से, मम्मा बाबा उस वक्त ऐसे मिलना होता जैसे कि आज दीदी दादी, उस भी ईवी था, बहुत थोड़े बच्चे थे बाबा के। तो मम्मा ने कहा, उन्होंने कहा, लोके फादर ने कहा, अगर ये जॉब भी करेगा तो हमें कोई पैसे की दरकार नहीं, यज्ञ में करेगा, यज्ञ में रहेगा, आप करो। मम्मा ने कहा नहीं, वो बाबा ने जो कहा है उसको फॉलो करना है, वही कार्य करना है जो बाबा ने कहा है। तो हम तभी से लेकर के 1961 से पूरा के पूरे हम इस सेवा में लगा दिए गए। और पहले जगदीश भाई जी के साथ रहे, ट्रेनिंग ली बहुत साल तक, और बीच बीच में बाबा से मिलते रहे, आते रहे, जाते रहे। तो देखो, हम एक और बात सुनाते हैं, बाबा छोटी सी अगर आप में कोई क्वालिफिकेशन है, हमें सीखना है उसको, उस क्वालिफिकेशन को बहुत मल्टीप्लाई करके वो यूज करते थे। उन दिन में प्रदर्शनी बनी थी, सीढ़ी का चित्र निकला था, तो हमने उसकी स्लाइड लेके एक बहुत सुंदर सीढ़ी का चित्र बना के बाबा को भेजा दादी प्रकाश मणि के द्वारा। बाबा को बहुत पसंद आया। उस समय के बाद बाबा ने हमें लेटर लिखने डायरेक्ट शुरू किए, बहुत पत्र आते थे। बच्चे देखो, आप मुरली में भी सुनते हो बच्चे, ये करेक्शन करो, वो करेक्शन करो। पहले बाबा हमको पत्र लिखते थे, फिर मुरली भी चलाते थे, बच्चे मुरली पढ़नी चाहिए, मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो इस प्रकार से चित्रों की जो सर्विस थी उस वक्त बहुत चालू होगी। हमको उस बाबा ने उसमें निमित्त बना दिया। हमने एक स्टूडियो खोला, उसमें आर्टिस्ट एम्प्लॉय किए, लौकिक परिवार से हमें कोई वर्षा मिला था, चित्रशाला बनाई और पहला 20 चित्रों का सेट बना करके हम बाबा के पास मधुबन में ले आए। बाबा थी, दीदी थी, वो हिस्ट्रियाल बन चुका था, वो देखा, बाबा ने कहा बहुत अच्छा बाबा, बड़ी अच्छे, वो उनको अच्छा लगा। तो देखो फिर और क्या वरदान दिया। फिर बाबा ने हमको फिर बुलाया अपने कमरे में, बच्चे आओ, आकर के मैं नीचे बैठने लगा, बाबा ने कहा नहीं, मेरी साथ गद्दी पर बैठो। गद्दी पर बैठाया, मैं तो नहीं बैठता था, मैंने कहा बाबा इतना बड़ा, मैं छोटा था, क्या मैं कैसे बैठूंगा। फिर भी बिठाया गद्दी पर, बड़ा प्यार किया बाबा ने। देखो क्या महावाक्य, छोटा सा काम किया था, क्या बाबा इतना अथॉरिटी है, ऑल माइटी अथॉरिटी, क्या नहीं करा सकता, आर्टिस्टों को टच कर दे, कुछ कर दे। लेकिन हम छोटे बाबा के बच्चे, बाबा ने कहा बैठो, बाबा ने वरदान दिया, बच्चे गद्दी पर बैठो। मैं गद्दी पर बैठ गया। बाबा ने कहा बच्चे, जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहां भी और वहां भी। वहां कहां बोलो, सतयुग में। अगर अभी आप हम सभी क्या समझते हैं, दुकान किसकी है, घर किसका है, क्या बोलते हो आप, किसका है वो, बाबा का मानते हैं ना, मानते कि नहीं मानते, हाथ खड़ा करें। हम क्या कहते हैं, किसका घर है, ये गद्दी किसकी है, कोई दुकान है, कोई ऑफिस है, कुछ भी है, कोई कारोबार है, हम क्या समझते हैं, हमारा नहीं है, ये बाबा का है। अगर बाबा के समझेंगे तो बाबा साथ है ही, मददगार है ही है। तो जब बाबा ने ये वरदान दिया तो बड़ा उमंग उत्साह आया, बहुत उमंग। बाबा की गद्दी तो बच्चों की गद्दी, और यहां भी और वहां भी वरदान दे दिया। आप मानेंगे, इस वरदान से इतनी सेवा हुई, हजारों प्रदर्शनियां बनी, म्यूजियम बने। उस वक्त हाथ से बनाते थे, बाबा मुरली में है ना, हर एक चीज हाथ से बनती थी, कोई प्रिंटिंग नहीं होती थी, वो बनाया। म्यूजियम बने, मेले बने, तो जहां जहां म्यूजियम बनता था, हम कहते वहां जाओ, चित्र ले जाओ, ये करो वो, बाबा रोज लिखते रहते थे पत्र, और मुरली भी चलाते थे। तो ये बाबा के समीप आने का, बहुत नजदीक आने का एक मौका मिला, और सेवा करने का भी एक बहुत मौका मिला। बाबा पता क्या कहते थे, बच्चे तुम हर हफ्ते मेरे पास आओ, ये कहते हर हफ्ते यानी दिल्ली से यहाँ, और 18 घंटे लगते थे गाड़ी में, वो एक जनता गाड़ी होती थी, 18 घंटे आने में 18 घंटे जाने में, तो बाकी डेढ़ दिन तो उसे बीत जाता था। तो फिर भी हम कोशिश करते थे, बाबा ने कहा आओ तो चित्र बनवाते थे, ले आते थे, बाबा को दिखाते थे। इस प्रकार से खूब सेवाएं हुई, कैसे कैसे प्रदर्शनी आई उसमें में, पिक्चर के रूप में आई, आप जानते हैं शिव किरण वाला कैसे बना, हमारा फ्लैग कैसे बना, हमारा बैज कैसे बना। इन सब कार्यों के लिए बाबा ने अपनी इंस्ट्रक्शन दी, मुरली चलाई, हम बच्चों को निमित्त बनाया ये कार्य करने के। तो हमें बड़ी खुशी है कि बाबा के संग में रह करके ये कार्य बाबा ने हमारे द्वारा कराया, ये बात खुशी है। अब ऐसे बाबा, हम बाबा के साथ बैठते थे, उनका हर कदम सच रियलिटी, हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प कैसा था बताओ, कैसा होगा, हर कदम, हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प उनका विशेष था, साधारण नहीं था। वो किसी को ऐसे देख भी देंगे ना, यूं दृष्टि देंगे ना, उड़ जाएगा। किसी पर ऐसे हाथ रख दिया वो फूला नहीं समाएगा, वाह बाबा ने देखो मेरा हाथ रख दिया। किसी को गिट्टी खिला दी उसको मजा आ जाएगा। नहीं, बाबा का हर एक चीज जो थी वो विशेष थी, ही वॉज नॉट साधारण। हम अभी साधारण है, हम क्या चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, क्या बनना है, क्या बनना चाहते हैं, बाप समान बनना चाहते हैं ना, यस सर नो, क्या बनना चाहते हैं, हाथ खड़ा करें, क्या बनना चाहते हैं, बाप समान बनना चाहते हैं, नहीं भाई साहब आप चाहते हैं ना बनना, वी आर टू बिकम जस्ट लाइक फादर, शिव बाबा ऐसा नहीं, ब्रह्मा बाप समान, तो क्या करें, कैसे बनेंगे, क्या बन गए या कभी कुछ कमी है, क्या कमी है, कमी तो है ना, है या नहीं, कमी है, हाँ आगे बढ़े हैं लेकिन अभी फासला काफी है, तो कैसे पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, जो डिस्टेंस है बाप और बच्चों में डिस्टेंस है, कैसे पूरा होगा। बाबा ने अभी इस दफा की वाणी में जब कह दिया, संडे की वाणी में आपने पढ़ो, मैंने दो तीन दफा पढ़ी है, जबरदस्त वाणी है वो, जो बाबा ने अभी आपको प्रिंट होके मिली भी है, वो इस कल परसों जो मिली है। बाबा ने क्या कहा कि आपका साधारण मत बनिए, हो सकता है मेरे बच्चों में अभी नेगेटिव तो नहीं होगा, मैं समझता हूं नेगेटिव हमारे में, नेगेटिव माने उल्टे संकल्प, वो विकारी संकल्प, वो तो नहीं है ना हम ब्राह्मणों में, यस वो तो नहीं है बिल्कुल, वो तो खत्म हुए, अच्छी बात है। बाबा का हमारे पर फेथ है कि मेरे बच्चों में अब नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, यानी हमने कर्मातीत बनना है, उसकी पहली क्या स्टेज है कर्मातीत बनने के लिए, पहली स्टेज है कि हम विकर्माजीत बने, कोई अब विकर्म नहीं होना चाहिए, सुना ब्राह्मणों, अब हमारे से कोई विकर्म क्या नहीं होना, यस नहीं होना चाहिए, नो विकर्म, पाप कर्म नहीं, जैसे बाबा कहते ना पाप कर्म की सजा मिलेगी, अब वो पाप कर्म नहीं होना चाहिए, पहले तो ये अवस्था चाहिए, अब वो नहीं भी होता होगा अच्छे से सच्चे ब्राह्मणों में। दूसरा क्या है, विकर्मा जीत, फिर विकल्प जीत, हमारे में विकल्प भी ना हो, यानी नेगेटिव थिंकिंग भी ना हो ब्राह्मणों में, विकल्प से डरना चाहिए, अगर विकल्प आ रहा है, जगह बना रहा है, जल्दी भगाओ उसको, उसको स्थान मत दो, क्योंकि विकल्प से क्या होगा, आत्मा रूपी बैटरी डाउन होगी। सुन लो, जो आपने योग से कमाई की, अपने पावर भरी, अगर विकल्प आने शुरू हुए और उसकी लाइन लग गई तो आपके जो पावर कम हो जाएगी, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, इसलिए विकल्प भी नहीं चाहिए। थर्ड क्या है फिर, चलो विकल्प भी ब्राह्मणों में नहीं होंगे, बहुत कम कोई होने नहीं चाहिए, होंगे नहीं अब। थर्ड है व्यर्थ अतीत, विकर्माजीत, विकल्पाजीत और व्यर्थ अतीत, व्यर्थ भी नहीं होना चाहिए। ये बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चों में कुछ व्यर्थ रहा हुआ है, और चलो व्यर्थ भी नहीं है, अभी साधारण है, व्यर्थ भी बहुत कम होगा। हमारे बच्चों, बाबा कह रहे मेरे बच्चों के संकल्प साधारण है, कर्म भी साधारण है। तो करना क्या है, साधारण में न्यूट्रल, जैसे मानो अभी आप चल के जाएंगे, ठीक है चल के जा रहे, कोई काम नहीं है उसमें, साधारण कोई संकल्प भी नहीं है, तो क्या वो साधारण है? अगर उसमें पॉजिटिव संकल्प हो, मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, शीतल हूं, श्रेष्ठ हूं, शक्तिशाली हूं, लाइट हूं, माइट हूं, मस्तक मणि हूं, अकाल तख्त निशीन हूं, अकाल मूरत हूं, परम धाम का वासी हूं, बाबा का बच्चा हूं, मैं देवता हूं, ये जो अगर संकल्प आप चला रहे हैं वो पॉजिटिव है, इन सब के बगैर जो है वो न्यूट्रल है। यानी आपने क्या, हमने क्या किया है, हम न्यूट्रल संकल्प हमारे बहुत है, हम कहीं अभी क्या सोच रहे थे, कुछ नहीं, हमारा बहुत सारा समय कुछ नहीं में जाता है, आई टेल यू दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल गियर। पेट्रोल जा रहा है, टाइम जा रहा है और गाड़ी न्यूट्रल गियर पर खड़ी है, न आगे जाती है न पीछे जाती है। अगर आपने पॉजिटिव संकल्प किए, यही और ज्यादा लंबा चौड़ा करने की दरकार नहीं, मैं कौन, दादी कहती नहीं है किसका और कहां का, क्या बनने वाला हूं, सिटी चक्कर, ये जो हम चीजें, मैं पूज्य रूप, ये सारा, अगर ये शुद्ध संकल्प आएंगे, पॉजिटिव संकल्प आएंगे, उससे क्या होगा, उससे बैटरी चार्ज होगी। पॉजिटिव संकल्प से दो चीजें मिलती है, एक प्योरिटी और एक पावर, दो चीजें मिलती है। सत्युग में क्या चाहिए, दो क्राउन है ना सत्युग में, कौन कौन से, क्राउन ऑफ लाइट प्योरिटी और क्राउन ऑफ पावर। सच कहते हैं अगर आप इन पॉजिटिव संकल्पों में रमण करते रहो, आगे तो बिंदु बन बिंदु को याद तो करना है, ये भी करते रहेंगे तो आपको प्योरिटी भी आएगी, पावर भी आएगी, डबल सरताज बनेंगे ही बनेंगे, पक्का है ये। तो क्या मुश्किल है बताओ, क्या मुश्किल है? यानी जो आपका जो कुछ नहीं में जा रहा समय, उसको ये पॉजिटिव में लगाओ। मैं तो कोशिश करता हूं, न्यूट्रल पर होगा ना तो गियर नेगेटिव हो सकता है, अगर पॉजिटिव होगा तो पहले न्यूट्रल होगा फिर गियर होगा, होता ना स्कूटर का वो होता है, उसमें ये होता है, पहले होता है जीरो न्यूट्रल, फिर आगे होता है पॉजिटिव, पीछे होता है नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव में रहेंगे, पॉजिटिव संकल्प करते रहेंगे, यही शुद्ध संकल्प, दैट इज पॉजिटिव, गो ऑन रिवाइजिंग एंड रिवाइजिंग एंड रिवाइजिंग, रिवाइज करेंगे तो रियलाइज होगा। भगवानो वाच मुरली में आया है, अगर हम एक दफा कह दिया मैं आत्मा हूं बस हो गया, हम तो आत्मा है ही, नो नो नो, आई एम सोल, सोल एंड सोल, रिवाइज एंड रिवाइज, ये रिवाइज करना है इसको, एक बार कहने की बात नहीं, मैं कहां का हूं, रिवाइज करना है, अगेन एंड अगेन रिवाइज, जितना रिवाइज करेंगे उतनी पावर आएगी, उतना रियलाइज होगा और आगे बढ़ेंगे। अगर आपने कहा हम जहां बैठते हैं ना अभी योग में बैठे, नींद आ गई, क्यों, कि आप रिवाइज नहीं कर रहे, मनन चिंतन नहीं कर रहे, तो ये मनन चिंतन करने से ही पावर आती है। वो नई बात नहीं, पुरानी बात तो करो जो बाबा ने बताई है, चलो नया जो निकालो वो तो ठीक है मक्खन, चलो पुराना तो पहले वो करो जो आप बाबा ने जो हमको बताया है, बहुत अच्छी बताई है। देखो एक दफा बाबा ने होमवर्क दिया था, बच्चे इस पांच स्वरूपों को रोज आठ बार या कितने आठ बार सारे दिन में रिवाइज करो, कहा था ना एक काम, तो करते हैं आप लोग, करते हैं सभी, देखो कोई कुछ थोड़े करते हैं, तो बताओ अविनाश कैसे आएगा। जब हम बाबा की बात को पूरा नहीं फॉलो करते, ये बातें नहीं बाबा के होमवर्क करते, तो विनाश इसलिए दूर होता जा रहा है। ये करो भाई, जब तक ये रिवाइज नहीं करेंगे, बाबा कहता है अभी चलो विकल्प भी नहीं होंगे, व्यर्थ भी नहीं होगा, साधारण है, साधारण को आप बनाइए, समर्थ बनाइए, तभी व्यर्थ खत्म होगा। अगर आपका समर्थ संकल्प चल रहा है, शुद्ध संकल्प चल रहा है, ना व्यर्थ आएगा ना विकल्प आएगा ना साधारण लोग आप शक्तिशाली बन जाएंगे। और है बड़ा इजी, मुश्किल नहीं है। मैं आत्मा हूँ, हम तो यही बार बार रिवाइज करते हैं, शुद्ध हूँ, शांत आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, अपने गुणों को याद करते हैं, परम धाम में जाके बैठते हैं, सामने बिंदु को देखते हैं, बिंदु को देखते वो बिंदु के गुणों को याद करते हैं तीसरी आंख से, इन्हीं बातों में रमन करते हैं। फिर कभी और आगे पैदल चल रहे हैं तो मैं देवता बनने वाला हूँ, मैं पूज्य हूँ, मैं वो निरंकारी ब्राह्मण हूँ, इन सब बातों को याद करना है। बाबा को संबंधों से याद करो, नौ संबंध हम उससे याद करने की कोशिश करते हैं, यानी एक दो संबंध हमारे कितने संबंध है, नौ संबंध कहो तो बताऊ मैं आपको, नौ कौन से है, सबसे है डियरेस्ट कौन है, हमारी माँ है, डियरेस्ट मदर, स्वीटेस्ट फादर, हाईएस्ट टीचर, होलीएस्ट सतगुरु, अनफेलिंग फ्रेंड, सुलोना साजन, सुप्रीम सर्जन, फेथफुल चाइल्ड एंड मोस्ट बिलव्ड माशूक। ये नौ संबंध है, उनको ये मर्ज करो, केवल रटना नहीं है, ये मर्ज करके रियलाइज करो उसको। हम वो करने की कोशिश करते हैं, आप भी करते होंगे, संबंधों से याद करो, गुणों से याद करो, ताकि मन बुद्धि इसमें बिजी रहे, मन में शुद्ध संकल्प हो और बुद्धि जो है वो शिव बाबा बिंदु रूप को परम धाम में देख रही हो। चलते फिरते भी ऐसा हो सकता है, मन बुद्धि को दोनों को लगाओ, दोनों को लगाना चाहिए। योग मीन्स मन भी लगा हुआ हो, बुद्धि भी लगी हुई हो, बुद्धि कहाँ हो, टिकी हुई हो शिव बाबा बिंदु रूप पर परम धाम में, चमकता हुआ स्टार, स्टार पर, और वो, और जब बुद्धि हो, मन हो, उसमें कुछ छोटे मोटे छोटे संकल्प, ज्यादा संकल्प नहीं, यही मैं ये, तो क्या होगा, जो अति इंद्रिय सुख है उसकी प्राप्ति अवश्य होगी। अगर ये करेंगे, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि संगम पर ही अति इंद्रिय सुख मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता, न सत्युग में मिलेगा, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति केवल संगम पर ही होती है। अगर अभी हम ब्राह्मणों ने अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति नहीं की, उससे वंचित रह गए, तो मानो बहुत बड़ी प्राप्ति से वंचित हो जाएंगे, कलप कलप ऐसे वंचित हो। तो कोशिश कीजिए, एक बार खुशी, खुशी तो मैं ज्ञान की खुशी है, बड़ा अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, परिवार अच्छा है, मधुबन अच्छा है, दादियां अच्छी है, बाबा अच्छा है, तो खुशी है ही है। लेकिन अति इंद्रिय सुख, आंतरिक खुशी, एक वो आनंद जिसे कहना चाहिए, वो होता है मैं आत्मा परम धाम में बैठ करके शिव बाबा को देखता रहूं और उसके गुणों को याद करूं, उसके कर्तव्यों को याद करूं, उसको संबंधों से याद करूं, और कोई बात बाद में याद ना आए, उससे अवश्य प्राप्ति होती है। यानी वो खुशी बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, वो मोस्ट वैल्यूएबल चीज है। जिसको ना आता हो पूछे अति इंद्रिय सुख कैसे प्राप्त हो, हम बताएं आपको। तो ये जो है, इस प्रकार से अगर हम चलेंगे तो हमारे व्याप्त समाप्त होगा, तो हमारा हर कर्म के साथ याद होगी, तो हम कर्मातीत बन जाएंगे। बाबा भी, बाबा का भी ऐसे था, बैठते थे अंतिम दिनों में, तो बैठते थे तो हमारा बोलने का दिल ही नहीं करेगा ना, वो बाबा बोलते थे कुछ, बस आए बैठे, दृष्टि दी या टोली खाई और चले गए, ज्यादा बातचीत भी नहीं थी। बाबा हमेशा जैसे उपराम हो करके, ये सब हमें भी बाबा कहते हैं, आप भी उपराम बनो, सेवा करते हुए भी समझो ये मेरा नहीं, ये बाबा का है, उस याद में रहेंगे तो समझो बाबा हमारा साथी है ही है। कई कहते हैं इसी में लगे रहेंगे तुम्हारे और काम कैसे होंगे, डोंट वरी, बाबा सब मदद करने के लिए तैयार है, हमारा अनुभव है। हमारा इतना बड़ा कारोबार चलता है, प्रिंटिंग प्रेस है, ये है, मैगजीन है, क्या बहुत है बाबा का, लेकिन क्या वो, हम कहते नहीं तो बाबा करने वाला है। एक दफा दादी ने, दादी को मैं कहा, मैं दादी मैं तो बहुत भोला भाला हूँ और ये तो बड़े बड़े महारथी है, कहते भोला भाला कैसे है, इतना बड़ा कारोबार आपका कैसे चल रहा है। मैं तो ऊपर करा, ऊपर वाला कराता है, कहता यही इंटेलिजेंट है, यही खूबी है कि आप समझते हो ऊपर वाला कराने वाला है। तो आप भी समझो, जो भी कार्य है सची, आप अपना लौकिक कार्य भी अगर समझो ये बाबा का है, तो बाबा कराएगा, गारंटी है, बाबा छोड़ेगा नहीं। हाँ जब उसको आप छोड़ देते हो कहते चलो कम करो। अगर हम सोचें कि बाबा मेरे साथ है, बाबा मददगार है, ये काम बाबा का है, वही करा रहा है, तो ही इज बाउंड टू हेल्प यू, वो आपकी मदद करने के लिए बंधा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से चलेंगे जो हम कर्म करेंगे, कर्मों का कर्मातीत बनते चले जाएंगे, बाप समान बन ही जाएंगे, इसमें कोई बनना भी हम बच्चों को है। बाबा क्या कहता है, कौन बनेंगे और, कोई बाहर तो थोड़ा आएंगे, हम बच्चों को ही कर्मातीत फरिश्ता बनना है और अवश्य बनेंगे, ऐसी मेरी आशा है। इसमें आगे पुरुषार्थ करो। और 3 तारीख की जो वो ये वाणी थी अभी संडे की, उसको बार बार पढ़ो कि कैसे हम जमा का खाता बढ़ाएं, कैसे हम व्यर्थ समाप्त करके, व्यर्थ तो है बाबा का कम है, साधारण को भी जमा करें, साधारण को हम पॉजिटिव मिलाए। ओम शांति, ओम शांति।
बाबा तेरी आ